ओम शांति। आज जो हम टॉपिक जिस पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हाई इंपैक्ट टीचिंग स्किल्स। हमारे पढ़ाने की वो कौन सी विधाएं हो, हमारे पढ़ाने में वो कौन कौन सी टेक्निक हो जो हम अपनी टीचिंग के अंदर यदि शामिल कर लें तो हमारे पढ़ाने का स्तर एकदम से ऊंचा हो जाए, जो क्लास का आखिरी स्टूडेंट बेंच पे बैठा हो उसको भी लगे कि दिस क्लास इज फॉर मी, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी है। ये देने के लिए हमें कुछ टीचिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स समझने होंगे। अब हम आज आपसे बात करने जा रहे हैं मेन टीचिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे। टीचिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल समझने से पहले एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि हमारे सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो कौन से स्टूडेंट बैठे हैं। तो एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर हॉर्वर्ड और उन हॉर्वर्ड एक साइंटिस्ट ने उन्होंने बताया डॉक्टर गार्डनर्स थ्योरी जो कहती है, एक मिनट मैं आपको साथ साथ पीपीटी भी दिखाते चलूंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हों। हम बात करने जा रहे हैं आपके सामने इस समय कि कौन से स्टूडेंट हमारी क्लास में अवेलेबल होंगे। तो एक साइंटिस्ट रहे हॉवर्ड गार्डनर, इन 1943 में उन्होंने एक अपनी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस ये कहती है कि हमारे यहां पर 9 तरह के स्टूडेंट हमारे क्लास में बैठे होते हैं। देर आर 9 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स विच आर सिटिंग इन अवर क्लास। यदि 9 डिफरेंट तरह के स्टूडेंट हमारी क्लास में बैठे हों तो हमें कौन सी क्या एक सिंगल टेक्निक पढ़ाने की सिंगल चौक एंड टॉक पद्धति काम में आएगी, क्या सिंपल चौक एंड टॉक या किसी को एक बार खड़ा किया हमने उसने रीडिंग लगा दी, वो मेथड्स काम में आ पाएंगे। क्योंकि हमारी क्लास में 9 अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं तो हमारी पढ़ाने की विधियां भी उनके हिसाब से अलग अलग होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट हमारे क्लास में होंगे। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत कहता है द फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स विल बी इन लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ऐसा विद्यार्थी हमारी क्लास में बैठा है जो लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट है। व्हाट डू वी मीन बाय लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट? लैंग्वेज उस पर उसकी कमांड है, या तो बहुत अच्छी रीडिंग क्वालिटी है, बहुत अच्छी राइटिंग स्किल्स है उसके अंदर, या रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग, वो बोलना बहुत अच्छा जानता है। ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं वो किस तरह के आगे जाके फ्यूचर में बनते हैं, उन या तो बहुत अच्छे पॉइट्स बनेंगे, कवि होंगे जीवन में, आगे जाकर के ऑथर बन जाएंगे, एडिटर संपादक बनेंगे, जर्नलिस्ट होंगे, ऑरेटर्स जो स्पीक करने वाले हैं वो होंगे, यानी कि उनका आगे जाके प्रोफेशन क्या होगा, जहां कहीं ना कहीं रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग काम में आ रही है, वो कहलाते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट स्टूडेंट। दूसरे तरह का स्टूडेंट जो हमारी क्लास में हो सकता है दैट विल बी लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंट। लॉजिक्स उसको तुरंत समझ में आ रहे हैं, वो मैथमेटिक्स की जब क्लास आएगी ना उसको मैथमेटिक्स की क्लास बहुत अच्छी लगेगी, 2×4 के अंदर उसको बहुत आनंद आएगा। लेकिन वही यदि उसको हिंदी की कोई क्लास या कविता कोई पोयम आ गई क्लास के अंदर, हिंदी के पीरियड में वो बोरिंग फील करेगा। तो सेकंड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस सेज दिस इज लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तीसरा तरह का स्टूडेंट हमारी क्लास में होगा काइनेस्थेटिक बॉडीली इंटेलिजेंस। उसको मजा किस, पहले दो में नहीं आएगा, उसको किस में मजा आएगा? करके सीखना चाहता है वो, भाग दौड़ की कोई एक्टिविटी आप उसको करा दीजिए, खड़े होकर छोटी सी एक्सरसाइज करके कुछ सिखा दीजिए, हाथ पांव कुछ हिलाएगा, दौड़ेगा, खेलेगा, इस तरह की चीजों में उसे आनंद आएगा, तभी वो खुद करेगा तो वो सीखेगा। ऐसे स्टूडेंट भविष्य में जाकर के क्या बनते हैं, या तो बहुत अच्छे डांसर्स बनेंगे, स्पोर्ट्स पर्सन बनेंगे, एक्टर बनेगा, एरिलिस्ट जो हवा में करतबबाजी करते हैं वो होंगे, जिमनास्ट हो सकते हैं, यानी जो बॉडीली एक्टिविटीज करते हैं आगे जाके वो उस तरह की भविष्य उनका बनता है। चौथा तरह का जो स्टूडेंट है हमारे पास होगा स्पेशल इंटेलिजेंस। व्हाट डू वी मीन बाय स्पेशल इंटेलिजेंस? पिक्चर को जो देख के उसकी गहराई को अच्छे से समझ ले। फॉर एग्जाम्पल, यहां का ये सीन देखा और हो सकता है वो कागज के अंदर उस सीन को उतार दे, हो सकता है वो बहुत अच्छा इंटीरियर डेकोरेटर बने आगे जाकर के, बहुत आर्किटेक्चर बने, इंटीरियर डेकोरेशन हुआ, आर्किटेक्चर हुआ, बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनिंग कर सकता है पिक्चर, मूर्तिकार बन सकता है, तो जो व्यक्ति स्पाशल इंटेलिजेंस यानी उसकी आंखों में गहराई होती है, किसी चीज को देख लेता है, वैसी की वैसी चीज वो डिजाइन स्वयं बनाने की क्षमता रखता है, वो होगा स्पाशल इंटेलिजेंस। गार्डनर्स थ्योरी के हिसाब से पांचवा हमारी क्लास का स्टूडेंट ऐसा हो सकता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस स्टूडेंट हो, किसी गीत के माध्यम से, राइम के माध्यम से वो बहुत अच्छे से समझता है क्लास को। आप उससे पढ़ने के लिए बोलो, हो सकता है कानों के अंदर वो कुछ लगा के म्यूजिक सुन के, जब वो स्टडी भी कर रहा होगा घर में तो आप देखोगे ऐसा स्टूडेंट घर में स्टडी करते करते भी कान में सॉन्ग लगे होंगे और वो पढ़ भी रहा होगा। हम लोग सोचते होंगे अरे ये स्टूडेंट क्या पढ़ रहा होगा, ये तो ऐसे ही, लेकिन वो ऐसे ही नहीं है, वो म्यूजिकल इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। अब म्यूजिक की अलग अलग धुनों के साथ काम करने में उसे मजा आता है, आगे जाके और अच्छे ऑर्केस्ट्रा के अंदर हो सकता है उसका एक अच्छा ड्रम खुद का हो, खुद अच्छे म्यूजिक क्रिटिक कर वो बने, म्यूजिक से रिलेटेड कुछ न कुछ वो काम आगे जाकर के भविष्य में करेगा। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। दो तरह की इंटेलिजेंस होती है इस फील्ड में, एक होती है इंटरपर्सनल और दूसरी इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल स्टूडेंट की खासियत क्या होगी, दोस्तों के साथ मिलकर काम करना चाहेगा, ग्रुप एक्टिविटी उसे पसंद आएगी, अकेले अकेले नहीं पसंद करेगा वो काम को। आप उसको साथ ऐसी एक्टिविटी क्लास के अंदर करा दें जिसमें बोले ठीक है आप तीन लोगों का ग्रुप है, आप चार लोगों का, चार चार लोगों का, सबका ग्रुप, और ग्रुप करके ये काम परफॉर्म करके दिखाओ, तो ऐसे लोग कहलाते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट। क्या होंगे भविष्य में ऐसे लोग, जो दूसरे लोगों के साथ सहज रह सकें, काउंसलर्स हो सकते हैं। और अच्छे किस तरह की विशेष खासियतों से क्या बनेंगे, देखिए मार्केटिंग के अंदर हो सकते हैं, जिन्हें 50 लोगों के साथ जीवन में मिलना जुलना पड़ता है, लोगों से मिलने जुलने में सहज अनुभव करते हैं। और क्या हो सकते हैं, लीडर्स, पॉलिटिशियन, हजारों की सभा को संबोधित करना उन्हें अच्छा लगेगा, टीचर्स हो गए, सोशल वर्कर हो गए, बहुत सारे इस तरह के लोग होंगे जो मल्टीपल लोगों के साथ काम करना पसंद करेंगे। अच्छा, जो सिंगल अकेला चुपचाप शांति से बैठा रहना पसंद करेगा वो क्या बनेगा, वो एक रिलीजियस लीडर बन सकता है, वो साइंटिस्ट बन सकता है, वो साइकोलॉजिस्ट बन सकता है, मनोवैज्ञानिक बन सकता है, जो अकेले अकेले में शांति में रह करके कुछ काम करना चाहता है, इंजीनियर, साइंटिस्ट, मनोवैज्ञानिक, इस तरह का उनका प्रोफेशन भविष्य में हो सकता है, ये कहलाएंगे इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल के बाद नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंट। आप ऐसे स्टूडेंट को गार्डन में ले जाकर के पढ़ाइए, वो फूलों के साथ, पक्षियों की चरचराहट के साथ, किसी इंडस्ट्रियल विजिट या किसी ऐसे तरह की विजिट में गए जहां आप उसको शिमला, नैनीताल, कोई अच्छी जगह घूमने के लिए ले जाइए, वहां उसको प्रकृति की प्राकृतिक और सुरम्य स्थानों पर ले जाकर के आप उसको कुछ चीज पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उसको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास हो सकता है वो बिल्कुल ही अलग तरह का स्टूडेंट होगा, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का आखिरी तरह का स्टूडेंट, नाइन्थ स्टूडेंट। उसका वो कुछ नई तरह की चीजें सोचने में, नए तरह के प्रश्न करने में वो अच्छा अनुभव करेगा, क्या मंगल पे पानी होगा या नहीं होगा, इंसान से पहले चक्र सृष्टि चक्र कब शुरू हुआ होगा, इंसान से पहले क्या हुआ होगा, मुर्गी पहले आई होगी या अंडा पहले आया होगा, इस तरह के प्रश्नों के अंदर वो अपने आप को बड़ा सहज महसूस करेगा, बहुत इंटरेस्टिंग महसूस करेगा। दोज आर पीपल कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। मानव इतिहास के अस्तित्व, विश्व के अस्तित्व, बहुत सारी चीजों के अस्तित्व के बारे में बात करेगा। ज्यादातर ऐसे लोग फिलोसोफर्स होते हैं या स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं। इन नौ तरह के स्टूडेंट हमारी क्लास में, इन नौ तरह के स्टूडेंट्स की वापस एक बार हम समरी देख रहे हैं, कौन कौन से नौ तरह के स्टूडेंट्स थे, जरा समरी में एक बार देख लें। इंटेलिजेंस अलग अलग दिखा रखी है, यदि म्यूजिक स्मार्ट है तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यदि बॉडी स्मार्ट है तो काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, पीपल स्मार्ट है तो इंटरपर्सनल, वर्ड स्मार्ट है तो लिंग्विस्टिक, लॉजिकल स्मार्ट है तो लॉजिकल एंड मैथमेटिकल, नेचर स्मार्ट है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, नेचर स्मार्ट के बाद पिक्चर स्मार्ट है तो स्पेशल इंटेलिजेंस, और सेल्फ स्मार्ट है तो इंट्रापर्सनल। इसके अलावा एक आठवें जो थ्योरी उन्होंने लास्ट में दी थी, गार्डनर्स की थ्योरी एक बार पहले लेवल पे आई थी, बाद में उन्होंने लास्ट में उस थ्योरी को रिपीट किया था, उसमें नवी थ्योरी जोड़ी थी जो इसमें नहीं है. दैट इज हमने बात की एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, जो मानव इतिहास के अस्तित्व, विश्व के अस्तित्व और नई क्रिएटिविटी की बात करेगा. अब हम बात करते हैं इस इंटेलिजेंस में आपने एक चीज और देखेंगे, ये जो कई बार क्या होता है क्लास के अंदर एक स्टूडेंट से हम पूछते हैं खड़ा करके, अच्छा आप बताइए 2 × 2 कितना होगा, वो स्टूडेंट बता देता है 4, दूसरा स्टूडेंट नहीं बता पाता. हम क्या कहते हैं, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वेरी गुड, हम सबको इससे सीखना चाहिए. बाकी सारे लोगों को क्या एक अंदर में फीलिंग आती है, एक लो सेल्फ एस्टीम की फीलिंग कहीं ना कहीं हम इंड्यूस कर देते हैं अपने स्टूडेंट्स में, जबकि उसमें मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंट है, कोई दूसरा स्टूडेंट किसी और चीज में इंटेलिजेंट होगा. सभी में सभी प्रकार की इंटेलिजेंस होती है, डिग्री सबकी अलग अलग हो सकती है. इनमें 90% मैथमेटिकल, कोई इंजीनियर है 90% मैथमेटिकल होगा, कोई फिलोसोफर है तो उसमें दूसरी तरह की इंटेलिजेंस 10% होगी, दूसरी वाली 90 होगी. तो सब में डिग्री अलग अलग है, हायरार्की अलग अलग है. क्या इनको नर्चर किया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, समय के साथ टीच किया जा सकता है? यस, इंटेलिजेंस बाय द वे गॉड गिफ्ट होती है, लेकिन समय के साथ उनको नर्चर भी किया जा सकता है. इनमें हायरार्की नहीं होती. हायरार्की मतलब छोटा बड़ा नहीं होता. मैथमेटिकल वाला तो बड़ा इंजीनियर बन गया, और छोटा जिसे बॉटनी या प्रकृति से लगाव है, नहीं भाई वो उसकी इंटेलिजेंसी कम है, ऐसा नहीं. नो हायरार्की. कभी भी हम अपने क्लास के स्टूडेंट को डबल स्टैंडर्ड से ना देखें. अच्छा, ये सारी चीज हम क्यों पसंद है, इसके बेस पे हम अपनी टीचिंग स्टाइल बनाएंगे. पहले आपको थ्योरी बता रहे हैं कि इतने तरह के स्टूडेंट है, तो फिर इनके हिसाब से टीचिंग स्टाइल क्या होगी वो आगे देखते हैं. इसके अलावा हम बात करें, एक दूसरे साइंटिस्ट ने कहा था, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहलाती है. टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण. एक ब्लूम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया. उन्होंने क्लासिफिकेशन में यह बताया कि हमें अपने स्टूडेंट को 6 तरह की मैक्सिमम टीचिंग हम दे सकते हैं, 6 लेवल ऑफ टीचिंग. पहला लेवल टीचिंग का क्या है, पहला लेवल चीजें रटा दी, रिमेंबर. एक बहुत छोटा बच्चा होगा, उससे पूछा जाएगा ए फॉर एप्पल, उसको ऐसा 2 लाइन लगा के और एक बीच में एक डंडा लगा के क्या बोल देते हैं उसको, ए फॉर, उसने रट लिया ए फॉर एप्पल. उसको पता नहीं, उसने जीवन में कभी देखा नहीं एप्पल कैसा होता है. ए फॉर एप्पल, ये क्या हुआ, कौन सा लेवल हुआ टीचिंग का, रटा दिया, रिमेंबर लेवल. रिमेंबर लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाए तो अंडरस्टैंडिंग लेवल. उसको एक सेब दिखा दिया आपने और फिर बताया दिस इज एप्पल, क्या हुआ, नेक्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नेक्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग, वो हुआ अंडरस्टैंडिंग. पहले केवल वो रिमेंबर कर रहा था, अब रिमेंबर के साथ साथ अंडरस्टैंड भी कर रहा है. अंडरस्टैंड के बाद तीसरा लेवल अप्लाई. कल को वो लाल टमाटर इसी साइज का कहीं देखेगा छोटा बच्चा, तो क्या कहेगा, ए फॉर एप्पल. टमाटर देखा, लेकिन टमाटर देख के क्या बोल रहा है, ये एक अच्छा संकेत है, इस बात का संकेत है कि उसने अपनी नॉलेज को अप्लाई करना शुरू कर दिया है. नॉलेज के एप्लीकेशन के बाद अगला लेवल क्या है, अप्लाई के बाद एनालाइज, एनालिसिस करना शुरू करता है. एनालिसिस मतलब मिर्ची सामने आएगी तो मीठा सामने आएगा, उसको पता लगने लगा इट्स अ स्वीट, मम्मा मेरे को अब एप्पल चाहिए, मैं बनाना नहीं लेता, वो एनालिसिस उसका शुरू हो गया. और एक लेवल ऊपर की अंडरस्टैंडिंग होगी तो अब मेरे को ना इंडियन एप्पल पसंद नहीं है, शिमला एप्पल चाहिए या ऑस्ट्रेलियन एप्पल चाहिए, क्योंकि अब वो इवेल्युएट कर पा रहा है उसके अंदर एनालिसिस के बाद एक और उसका मूल्यांकन कर पा रहा है कि अच्छा ये ऑस्ट्रेलियन एप्पल ऐसे होते हैं. इससे भी ऊपर हो सकता है वो बड़ा होकर साइंटिस्ट बन जाए और बोले इसके लिए मैंने है ना ऐसा एक केमिकल बनाया है, इस केमिकल को आप एप्पल के पेड़ में डाल दोगे तो तो इतना बड़ा, इतने एप्पल की जगह इतना बड़ा एप्पल लगेगा। कौन सा लेवल हो गया? अपनी खुद की क्रिएशन। हम अपने स्टूडेंट को रिमेंबर से उठा के क्रिएशन पे पहुंचा दें, रिमेंबर से उठा के क्रिएशन पे पहुंचा दें। जब ज्ञान में हम पहली पहली बार आए थे तो बाबा ने कहा था ओम शांति। सेंटर पे आके हम क्या सीखते हैं सबसे पहले? तो ओम शांति। वो क्या लेवल होता है हमारा? ओम शांति का मतलब भी नहीं पता। बहन जी ने ओम शांति बोला, देखते देखते हम लोग भी सीख गए ओम शांति बोलना। उस वक्त हो सकता है हमें ये नहीं पता था ओम शांति का मतलब ये होता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो रिमेंबरिंग जिस दिन पता लगा ओम शांति का मतलब शांत स्वरूप हूं, तो कौन सा लेवल आ गया? अंडरस्टैंडिंग लेवल आ गया। जब आप समझ के सामने वाले को बोलने लगे ओम शांति, ओम शांति बोल रहे हो तो आप शांत स्वरूप हो रहे हो, कौन सा लेवल आ गया? अप्लाई करने लगे उस लेवल नॉलेज को। अप्लाई के बाद एनालिसिस। जो परिस्थिति थी जब मैं ओम शांति बोल के सभा के अंदर गया, सारी सभा शांत स्वरूप हो गया। अपना एनालिसिस कर रहे हो कि परिस्थितियां कैसे बदलती हैं जब ओम शांति बोलते हैं। आप समझ रहे हो लेवल कहां से? और लास्ट के अंदर ओम शांति के बाद आप कोई ओम शांति पे एक नई कमेंट्री खुद की इजाद कर दोगे तो लास्ट लेवल पहुंच गए। बोले आप क्रिएशन लेवल आपने बना दिया, अपनी खुद की एक नई कमेंट्री बना दी ओम शांति पे। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी हो या दुनिया की हो, कहां से उठाना? रिमेंबर से उठा के क्रिएशन तक ले जाना है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के छहों चीजें हमने देखी, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, अप्लाइंग के बाद एनालिसिस। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की पांचवी पॉइंट थी, पांचवा लेवल था इवेल्युएशन। इवेल्युएशन के बाद क्रिएशन की क्षमता यदि हम अपने विद्यार्थियों में जगा सके तो वो होगा द बेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। ये हमने आपसे बात की ए फॉर एप्पल, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की समरी है। यहां पे साथ साथ एक टीचिंग का लेवल आप समझ जा रहे हो। जब भी हम कोई चीज पढ़ाते हैं, पूरा उसको करते हैं, तो उसके बाद क्या करना चाहिए? रिवाइज। समरी बता दी ना आपको, देखो पहले छह अलग अलग बताए लेकिन एक स्लाइड के अंदर लास्ट में समरी। ऐसे ही आपने नोटिस किया होगा हमने इससे पहले क्या पढ़े थे, हॉर्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी पढ़ी थी 1943, उस लास्ट में हमने उसको रिवाइज किया। इट्स अ गुड प्रैक्टिस, वॉट एवर थ्योरी और वॉट एवर वी आर टीचिंग, जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं आखिर के अंदर उसको समरी करते हैं, जहां भी उसका लॉजिकल एंड होता है। तीसरी चीज, अब हम आते हैं पेडागॉजिक टेक्निक या टीचिंग टेक्निक। पेडागॉजिक का मतलब होता है टीचिंग। क्या क्या पढ़ाने के माध्यम या तरीके हो सकते हैं हमारे वर्तमान पीढ़ी को? क्योंकि याद रखिए उनके पास गूगल है, उनके हमें जिन्हें पढ़ाना है वो साधारण आत्माएं नहीं है। हमारे नॉलेज में इतनी सी नॉलेज आएगी, वो टक 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 अपने साथ गैजेट लेकर के बैठे हुए हैं। कोई भी चीज आप फॉल्स नहीं बता सकते, कोई भी चीज आप अंदाज से नहीं बता सकते। बात करते करते, अच्छा भारत में 70% लोग गरीब होते हैं, मान लो आपने एक स्टेटमेंट दे दिया, वो तुरंत गूगल करेगा, सर यू आर रॉन्ग, इट इज 68%, 68% ही होते हैं, 70 नहीं होते। तो वॉट एवर वी आर स्पीकिंग वी शुड हैव क्लियर, उसके सारे हमारे पास क्लियरली एविडेंसेस होने चाहिए। अब हम बात कर रहे थे हमारी टीचिंग टेक्नोलॉजीज क्या क्या हो सकती हैं। फर्स्ट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड कोई है यहां, किसी ने कभी इस्तेमाल किया हो, यूज किया हो, सुना हो इसके बारे में? अच्छा कितने लोग हैं जिन्होंने सुना है? अरे वाह, हैं 40-50 लोग हैं जिन्होंने सुना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग नाम सुन के ऐसा लगता है कि ब्रेन में तूफान आ गया हूं। यस, दिस इज द थिंग्स विच वी यूज व्हेन वी वांट टू क्रिएट अ मल्टीपल टाइप ऑफ अवेयरनेसेस। जब हम कभी बहुत सारे आइडियाज जनरेट करना चाहते हैं किसी चीज के ऊपर, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द बेस्ट टीचिंग मेथड। एक बार की बात है, एक स्कूल के अंदर मैं पढ़ाने गया, तो वहां पर स्कूल में जो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे उस स्कूल के अंदर, मतलब 8वीं-9वीं क्लास के बच्चे थे, अब किसी एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछ लिया कि आत्मा क्या होती है। नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट कि एक स्टूडेंट को आत्मा और उनके सबके अपने अलग अलग बिलीफ, अलग अलग सिद्धांत, आप प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, हमने वहां पर यूज किया वो मेथड ब्रेन स्टॉर्मिंग, और बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट्स आए उस ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के। क्या किया हमने? ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, कोई एक व्यक्ति स्टूडेंट में से आप बुलाइए, बोर्ड पे आए, बोर्ड पे वो लिखने का काम करेगा, बस वो बाकी सारे ऑडियंस से पूछते रहिए, जो भी आइडिया मिलता जाए उस आइडिया को बोर्ड पे डाल दीजिए। जो भी प्रश्न है आपका, फॉर एग्जांपल हम जो दे रहे हैं उसमें बात हुई थी हम आत्मा के बारे में क्या समझते हैं, तो पहले व्यक्ति ने उठ के ऊपर आंसर दिया आत्मा ही परमात्मा है। आपको वहां पे रिजेक्ट नहीं करना उसके जो भी वो बोलता है, क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर आइडियाज जनरेट ही तब होते हैं जब हम उस आइडिया को रिजेक्ट नहीं करते। आपने उठ के पहले ही व्यक्ति को उठते समय आपने बोल दिया, अरे आपको इतनी सी चीज पता नहीं, आत्मा परमात्मा होती है। आपने जैसे ही रिजेक्ट किया, नए आइडियाज का प्रवाह बंद हो जाएगा। आप लास्ट में समरी कीजिए वो अलग बात है, लास्ट में एक सहमति बनाने का प्रयास कीजिए, लेकिन सारे आइडियाज को उठा के आप बोर्ड पे लिख दीजिए। एंड वंडरफुल, गांव के उस छोटे से रिमोट स्कूल के अंदर जिसके अंदर आठवीं और नवीं क्लास के स्टूडेंट्स थे, 100 से ज्यादा आइडियाज उन्होंने सिर्फ आत्मा और आत्मा पर दे दिए, सिर्फ आत्मा पर। इतने सारे आइडियाज, कोई बोल रहा आत्मा भूत प्रेत होती है, कोई बोलते हैं आत्मा, इतने बोले कोई देवात्मा होती है, महान आत्मा होती है, सब तरह के आंसर्स आए। वो पितर जैसे आते हैं, कई लोग बोलते हैं वो पितर होती है ना, वो आत्मा होती है, ऐसे बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल्स आत्मा के बारे में निकल के आए। आपको क्वेश्चन समझाना आसान, फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है आपको, मतलब आपके पास एक लैंड है बहुत बड़ी, और मान लो आपको बताना है कि इस लैंड पे हम कॉलेज भी बना सकते हैं, नई यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, इस कॉलेज में इस बड़ी लैंड पे हम एक मॉल भी खोल सकते हैं, 50 आइडिया, लेकिन आपको पता नहीं कौन सा फायदेमंद रहेगा, या आपको आइडिया ही नहीं आ रहा, यह भी बात हो सकती है। ऐसे केस में आप अपने, हमारे कॉलेजेस में भी इस तरह के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, सारे एम्प्लॉइज को बुला करके एक बार ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेते हैं, उसके लिए कहते हैं आओ मिलके ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेते हैं, सब अपना अपना आइडिया देते हैं, आइडिया को बोर्ड पे रखते हैं, 100-150 आइडिया आ जाते हैं, उनके बाद में इवेल्यूएशन के बाद एक करेक्ट आइडिया उसमें से सेलेक्ट कर लिया जाता है। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड। ये आप वैल्यूज के लिए भी कर सकते हैं कि लोगों को कौन कौन सी वैल्यूज पता है, आइए इस पे बोर्ड पे एक वैल्यू लिखिए जो वो अपने लिए लाइफ में करते हैं यूज। नेक्स्ट था केस स्टडी डिस्कशन। हायर स्टडीज में बहुत सारे लोग यूज करते हैं केस स्टडी, कोई लाइव केस स्टडी यूज की जाती है, कोई ऐसी चीज जो हो चुकी हो आप उसको निकाल करके बात करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने वो जिरॉक्स की एक मशीन, वो पहले फोटो में रील डलती थी, आपको ध्यान है कौन सी कंपनी थी, उसका नाम क्या था, कोडेक, किसी जमाने में इट वॉज प्राइड, दुनिया की 90% रील्स कोडेक की हुआ करती थी, लेकिन आज मार्केट से खत्म हो गई कोडेक, आपको पता होगा। तो ये केस स्टडी हो गई बिजनेस एनालिस्ट वालों के लिए, ऐसा क्या हो गया कि एक कंपनी जो दुनिया के अंदर नंबर वन परफॉर्म कर रही थी, अचानक वो कंपनी मार्केट से वैनिश ऑफ हो गई, क्यों? सो इट्स ए केस स्टडी। अब वो अलग अलग तरीका, अलग अलग केस स्टडी मतलब फिर उसका वो, क्या उन्होंने रिसर्च पे पूरा ध्यान नहीं दिया, जब मोबाइल मार्केट में आ रहे थे धीरे धीरे रील को गायब होना था, उनको किसी दूसरे मार्केट की तरफ से चोर होना चाहिए था। क्यों आज अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी आर डूइंग ग्रेट, विजय माल्या के केस में क्या हुआ कि वो अपने बिजनेस को वो परवान नहीं चढ़ा सके। सो इट्स ए केस स्टडी। तो केस स्टडी जो ऑलरेडी हो चुकी है उसके बारे में आप डिस्कस करके, आप जहां पर सॉल्यूशंस ओपन एंडेड हो, केस स्टडी किसे कहते हैं, जहां पर सॉल्यूशंस, आप यदि इस परिस्थिति में होते तो क्या करते, एक व्यक्ति बोलेगा मैं एक्स डायरेक्शन में जाता, दूसरा वाई, जेड, डब्ल्यू, सब अलग अलग डायरेक्शन में जाते। सो दिस इज एन केस स्टडी मेथड। नेक्स्ट गेम्स, छोटे छोटे वैल्यूज पे गेम्स डेवलप करके गेम्स के थ्रू भी हम टीचिंग कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन, वेरी गुड। अब एक बार हमने अपने क्लास के अंदर एक ग्रुप डिस्कशन रखा, पहले बात हुई कि क्या हमें सच बोलना चाहिए, वेदर वी शुड स्पीक ट्रूथ। तो आज दुनिया में ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, संभव ही नहीं है। तो दो ग्रुप अलग अलग बने, और दोनों ग्रुप पे फिर डिस्कशन हुआ है, वाज अ नाइस डिस्कशन, बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आया। तो ग्रुप डिस्कशन ऐसे टॉपिक्स जो कंट्रोवर्शियल, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि कंट्रोवर्शियल, ऐसे टॉपिक जिसपे दो अलहदा विचार हो, आप ग्रुप डिस्कशन के थ्रू ऐसे टॉपिक्स पे विचार निकालिए, इट विल बी ए गुड लेसन टू टीच। इम्परसोनेशन, इम्परसोनेशन कहते हैं किसी की फाल्स इमेज बनाना, मतलब किसी की कॉपी करना, इम्परसोनेट करना। फॉर एग्जाम्पल, वाजपेयी जी की अपनी एक स्टाइल थी, मनमोहन सिंह जी की भाषण की एक अपनी अदा थी, अपना स्टाइल था, मोदी जी का अपना स्टाइल है, किसी और, सब लोगों का अपना अपना एक अलग स्टाइल है, आप कोई उसकी कॉपी करके एक बार करके दिखा रहे हो, दैट इज इम्परसोनेशन। तो किसी एक्स वाई जेड की कॉपी, एक छोटे शॉर्ट टाइम के लिए आप उसकी कॉपी करके समझाना चाह रहे हो किसी कंसेप्ट को, दैट इज इम्परसोनेशन। नेक्स्ट है निमोनिक्स। निमोनिक्स किसे कहते हैं? जैसे आपने विबग्योर के बारे में जानते, विबग्योर क्या होता है? कलर्स, हा, इंद्रधनुष के सात रंग, आपने छोटा करके याद कर लिया विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। हिंदी में कोई लोग याद करते होंगे तो बेनी आह पिनाला के नाम से याद करते हो, बैंगनी नीला आसमानी हरा याद करते थे। सो इट्स अ मेथड ऑफ टीचिंग इन यूजिंग निमोनिक्स। निमोनिक्स यूज करके भी हम अपनी क्लास को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ पजल्स जरूर होने चाहिए। आपने यहां देखा, आपने अभी कुछ पजल्स वैल्यूज पे डेवलप की हुई है, स्पार्क वालों ने कुछ पजल्स डेवलप की हुई है, पजल्स के थ्रू आप वैल्यूज को पढ़ा सकते हो, अपनी खुद की पजल्स हम डेवलप कर सकते हैं। क्विज एंड रोल प्ले, क्विज लास्ट के अंदर ये भी रख सकते हो। क्विज में आप क्या कर सकते हो, चार चार स्टूडेंट के तीन या चार आपने ग्रुप बनाए और उनको कुछ क्वेश्चंस देते गए, और आपने कई जगह देखा होगा पास ऑन करते हैं, एक क्वेश्चन एक को पूछते हैं, फिर उस क्वेश्चन दूसरे को पास ऑन करते हैं, मार्क्स देते जाते हैं। इट्स अ क्विज मेथड टू टीच। और लास्ट में रोल प्ले, रोल प्ले जैसे स्किट वगैरह करते हैं, ड्रामा करते हैं। जैसे मान लो आपको विश्व एकता समझानी है, विश्व एकता में आपने क्या किया, एक छोटे छोटे चार बच्चे हैं, एक ने रोल प्ले किया, हिंदू का, एक मुसलमान का, एक सिख का, ईसाई का, फिर लास्ट में वो सारे मिलकर एक एक हो जाते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ रोल प्ले, किसी चीज का रोल प्ले करना। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग छोटे छोटे एटीएम कैसे काम करता है, मैं एक जगह गया तो वहां पर मतलब बड़े बड़े मैनेजर्स पढ़ाई कर रहे थे, बैंक का कोई चल रहा था सेशन, तो वो स्टार्टिंग में बता रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर एटीएम कैसे काम करता है। तो एक व्यक्ति यों करके एटीएम बना हुआ था, दूसरा व्यक्ति टक 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 नंबर डाल रहा था, फिर वो प्लीज प्रेस योर नंबर प्लीज, मतलब सारा का सारा वो रोल वैसे कर रहे थे, और दूसरा व्यक्ति आके पैसे निकाल के ले जा रहा था। सो इट वॉज ए मेथड ऑफ टीचिंग। जरूरी नहीं है कि छोटे, छोटे से लेके बड़े तक बहुत जगह रोल प्ले एक इफेक्टिव मेथड है टीचिंग का। मैं सारी ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको पता है, एक बोर्ड पे आकर के बहुत सारे आइडियाज, केस स्टडी, किसी पर्टिकुलर केस को लेके उसका पूरा पोस्टमार्टम करना, केस स्टडी एनालिसिस है, डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट में क्या होता है, लैब्स के अंदर आप कोई चीज दिखा करके समझाते हो, चाहे मैप दिखा करके समझाओ या कोई इक्विपमेंट के अंदर समझाओ दिखा करके, वो डेमोन्स्ट्रेट मेथड होता है। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद गेम्स, ग्रुप डिस्कशन, इम्परसोनेशन, निमोनिक्स, जैसे इन्होंने बिकॉज का निमोनिक्स बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है आप पढ़ पा रहे हैं, पढ़िए, विजिबल है। तो उन्होंने लास्ट में BECAUSE एक निमोनिक्स बना दिया। तो आपने नोटिस किया होगा, हमने हार्वर्ड थ्योरी के नौ सिद्धांत हैं, खड़ा होके अभी कौन नौ के नौ, हार्वर्ड थ्योरी में नौ तरह के स्टूडेंट कितने लोग बता सकते हैं, हाथ खड़ा करेंगे, एक दो, दो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जो अभी नौ सिद्धांत हम नौ तरह के स्टूडेंट बताए थे अपनी क्लास में, इतने सारे में दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये बता पा रहे हैं कि हम पूरे के पूरे आपको नौ तरह के स्टूडेंट बता देंगे, टीचिंग इंटेलिजेंस कितने तरह की होती है। अच्छा, अब मैं एक छोटा सा फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, हम अपने स्टूडेंट्स की स्किल्स को माइन करते हैं। माइन कहते हैं किसको, MINE, माइन क्या होता है, खान होती है, और स्किल किसको कहते हैं, इंटेलिजेंस हो गया एक तरह से। स्किल माइंड, हमारे जो नौ तरह के थे एस के आई एल एल एम आई एन ई स्किल माइंड, इसका फार्मूला बना दिया हमने स्किल माइंड। अब मैं आपको बोलूं कि एक एस पे है, एक के पे है, एक आई पे है, दो एल पे, एक एम पे, आई पे, एन पे, ई पे है। अब आप में से कितने लोग हैं जो वो बता देंगे कि सारे नौ के नौ हम बता सकते हैं? स्किल माइंड इज द फार्मूला, वो जो थे ना, एक एस से शुरू हो रहा है, एक के से, एक आई से, दो एल से। अभी हाथ खड़ा करें कितने लोग हैं जो नौ रिपीट कर सकते हैं यदि स्किल माइंड उसका फार्मूला है। हाथ खड़ा करें, नौ तरह की इंटेलिजेंस है जो सब रिपीट कर सकते हैं। अभी 12, 13, 14, 15, 16, 18 लगभग 20 लोग। आप देखिए पहले दो लोग कर पा रहे थे, अभी इट्स अ निमोनिक्स। निमोनिक्स में जैसे पहले नहीं पढ़ते थे भारत का संविधान, अब उसमें इतनी सारी लंबी चौड़ी मूलभूत कर्तव्य और वो इतनी सारी चीजें 12-15, तो आप एक फार्मूला अपने आप से बना लेते हो उसको याद करने का। तो आपने 36 गुणों की लिस्ट स्टूडेंट को बता दी, याद रहेगी? या आपने आत्मा के 7 गुण बता दिए? कोई छोटा सा फार्मूला भी कभी कभी हम दे सकते हैं ऐसी चीजों को याद करने का। नेक्स्ट पजल, पजल के बाद क्विज, देन रोल प्ले, और रोल प्ले के बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं। ये हमने 8-10 तरीके जो हम अपने क्लास में, ऐसा नहीं हर क्लास में आप 10 तरीके इस्तेमाल करें, क्लास की खिचड़ी बन जाएगी यदि आपने सारी क्लास के अंदर 10 यूज कर लिए। एक क्लास में 3 से ज्यादा मेथड कभी इस्तेमाल नहीं करें। सबसे बेस्ट मेथड है चॉक एंड टॉक, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, स्मार्ट क्लासेस। ये तो आपका रेगुलर है, जैसे फूड होता है, फूड के अंदर आपके पास रोटी, चावल, खिचड़ी, 3 बेसिक ग्रेडियंट है, उसके अलावा आप और कुछ भी यूज कर सकते हैं, 1-2 चीजें, सब्जी अलग अलग तरह की। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप हर दिन उसको 15 तरह का भोजन परोसेंगे तो फिर लॉन्ग टर्म में गड़बड़ होगी। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन फंडामेंटल्स पे जब हम बात कर रहे हैं, वी शुड नो अवर मटीरियल वेल। पहला पॉइंट है वी शुड नो अवर मटीरियल वेल। जो मटेरियल हम, मान लो पीपीटी है 50 स्लाइड की, मैं देख के नहीं गया और क्लास में आ गया, अब मैं क्लास में आने के बाद एक एक नो योर मटेरियल वेल सो यू फील यू ओन इट, अब मैं ऐसे एक एक पीपीटी को पढ़ने लगूंगा, विल इट गिव सम इंपैक्ट ऑन अवर स्टूडेंट? सर को ही नहीं आता। यदि ये इंपैक्ट आएगा कि हमारे टीचर के पास उस मटेरियल पे कमांड नहीं है तो वो उधार की ली हुई चीज लगेगी, वो चीज हमारी अपनी लगे, इसके लिए उस मटेरियल को 2 बार, 5 बार, 6 बार पढ़ के आप जाइए, अच्छे से देख करके जाइए। जब हमें ये पता लग गया, उसके बाद पॉजिटिव फीलिंग। पॉजिटिव फीलिंग मतलब कई बार स्टूडेंट के अंदर, एक बार हम क्लास में बैठे थे तो टीचर आते ही पता है क्या कहते हैं, ये क्लास है ना मेरी को दे दी, और कोई टीचर तो मिला नहीं उनको ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, है ना, 1.5 घंटा उनके पास बाकी था इसलिए क्लास उन्होंने मेरे को दे दी, इसलिए मैं आपके पास पढ़ाने आया हूं। द मोमेंट आई विल गिव द स्टेटमेंट आई किल्ड माई सेल्फ। जब यदि हमें अपने सब्जेक्ट के लिए गौरव का भान नहीं होगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीज पढ़ा रहा हूं, मुझे ईश्वरीय सौभाग्य मिला है ये पढ़ाने का, जब तक ये गौरव अभिमान स्वयं में नहीं होगा, हम अपने टीचिंग को वो परवान नहीं चढ़ा पाएंगे। अपने उस मटेरियल को लेकर के, द बेस्ट मटेरियल आई एम हैविंग, डेवलप रैपो विद द स्टूडेंट। अपने स्टूडेंट के साथ एक रैपो डेवलप, स्टूडेंट को यह पता हो कि हमारे सर एक स्वीट स्पीकिंग सर है, मैं कुछ पूछूंगा तो मेरे को पॉजिटिव आंसर मिलेगा, मुझे झिड़की नहीं मिलेगी, एक रैपो बन जाता है स्टूडेंट के साथ में। और स्टूडेंट को पहले से ही पता हो, नहीं नहीं सर तो है ना, जैसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे डांट देंगे, तो कभी वो रैपो बन नहीं पाएगा। नेक्स्ट, क्या हमें बुक ले जानी चाहिए क्लास में? बुक नहीं ले जानी चाहिए कभी भी। उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, चाहो तो हाथ में एक चिटकी रख सकते हो आप, उस चिटकी में, चलो मान लो ऐसे जगह जा रहे हो जहां पे पावर पॉइंट मौजूद नहीं है आपके पास, पावर पॉइंट मौजूद ना भी हो तो एक छोटी सी चिटकी आप हाथ में मेन पॉइंट रख सकते हो, नहीं रखेंगे तो क्या होगा, आप कुछ पॉइंट्स बताते समय भूल सकते हो। तो ब्रीफ नोट आप अपने पास चाहें तो रख सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी ए कंप्लीट स्टडी मटेरियल। आप एक एक पेज पन्ने पलट करके वहीं पे पढ़ने लगे, इट विल नॉट गिव ए गुड इंप्रेशन। डोंट राइट आउट योर टॉक। कई बार क्या होता है, पूरी कहानी, हाँ अच्छा बच्चों लिखो, पवित्रता, हाँ पवित्रता की डेफिनेशन किसे कहते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। अब वो हम सारी चीज उनको लिखाने लग जाते हैं एक एक चीज, तो वो भी ठीक नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज आप बता सकते हैं लिखने के लिए एक या दो चीज, एंड नेवर मेमोराइज योर क्लास, ना खुद रटें ना बच्चों को रटाएं। यूज एविडेंसेस, बच्चे आपसे प्रमाण मांग सकते हैं, बताइए सर ये आपने कहां से लिया। मेक रिहर्सल विजुअल एड एंड डू नॉट इमिटेट। हमने बात की फील ऑनर्ड, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपने मटेरियल के लिए। अप्रिशिएट योर लिसनर्स, बहुत जरूरी है। क्या पॉइंट है ये? अब फॉर एग्जांपल आप लोग यहां पर हैं, सुबह कितने बजे से बैठे थे? 9 o'clock से, और अभी कितने बजे गए? लगभग 9 बजे। कितने घंटे हो चुके? 8:30 से बैठे थे, 4 बजे से आए हुए, तो आप लगभग 15-16 घंटे बैठ चुके हैं, जिन्होंने अमृत वेला से लगातार आकर के यहां बैठे हैं। आसान नहीं है। सो थ्री cheers फॉर अवर ग्रेट लिसनर्स, अपने लिए तालियां बजाइए। हकीकत ये, हम भी कॉलेज में कभी 3-4 घंटे से ज्यादा पढ़ाते नहीं है, 6 घंटे से ज्यादा। कभी खुद पढ़ने की बारी आ जाए सेमिनार वगैरह की, तो 2-3 घंटे से ज्यादा बैठते नहीं है। लेकिन देखिए आज हम लोगों ने क्या किया, आप लोगों के साथ एक साथ 12-15 घंटे पढ़ा दिया। यू आर ग्रेट, क्योंकि साधारण पढ़ाई नहीं है, आप साधारण से असाधारणता की तरफ जा रहे हैं। सो वी शुड अप्रिशिएट अवर लिसनर्स, ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस हैं तो हम हैं, ऑडियंस नहीं है तो हम भी फिर किसे सुनाएं। नेक्स्ट इज टेक नेम इफ यू नो। बड़ी क्लास है ये तो, लेकिन छोटी क्लास जहां पढ़ा रहे हैं 50-60 स्टूडेंट हैं, एक दो को यदि आप जानते हो तो आप नाम से संबोधित करें, स्टूडेंट को अच्छा लगेगा। आप लगातार 5-7 क्लास नाम से संबोधित करें, नहीं पता है नाम, बड़ी क्लास है संभव नहीं है तो बात अलग है, बट ट्राई टू टेक 1 or 2 नेम इफ यू कैन टेक। टाइम क्लास का कितना होना चाहिए? एन आइडियल टाइम, ठीक है, इससे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हम आइडियल की तरफ नहीं है। आई एम स्किपिंग दिस। डोंट बी अपोलोजेटिक। कई बार क्या होता है, अरे रात को क्या हुआ ना कि मैं कहीं अपने दोस्त के यहां चला गया, वहां एक एक्सीडेंट हो गया था, उसका कुछ काम था, फिर रात को आते आते 12 बज गए, 1 बज गए, मेरे को टाइम ही नहीं मिला लेक्चर तैयार करने का। क्या हो गया? हम आते ही अपनी क्लास में क्या करने लगे, माफी मांगने आ गए, बैकफुट पे आ गए। जैसे क्रिकेट में होता है ना, एक बॉलर बॉल करता है और वो बैट्समैन डिफेंस करने लगता है। एक होता है डिफेंसिव शॉट, एक होता है ऑफेंसिव शॉट। आगे बढ़ के सिक्स भी लगा सकते हो, पीछे हटके बड़ी मुश्किल से अपने विकेट भी बचा सकते हो। तो समहाउ ऐसा देख के लगता है कि कहीं हम पीछे हट गए और अपना विकेट बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम बात कर चुके हैं इसमें। डोंट टॉक विद एन एंग्री फेस। क्लास में यदि हमने एंग्री फेस से बात की होगी, स्टूडेंट क्या बोलेंगे? मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं, आपको पता है। यदि हमारा गुस्सा निकलेगा तो बच्चे क्या बोलेंगे? आज घर से --, होगा ना? एंग्री फेस से कभी अपने स्टूडेंट से बात नहीं करें, एंड ऑलवेज वेलकम क्रिटिसिज्म। कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो याद रखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर जी कह के गए कि निंदक को, और निंदा हमारी सो करे सो हमारा मित्र, तो वेलकम क्रिटिसिज्म। और क्रिटिसिज्म को जो पचा गया वो ही ग्रेट बनता है। भगवान शंकर ने, शास्त्रों में आता है, शंकर जी ने विष पिया तब ग्रेट बने। तो क्रिटिसिज्म को पचाना। नेक्स्ट, ओपनिंग ऑफ अ क्लास, ओपनिंग मतलब स्टार्टिंग, क्लास स्टार्ट करने के साइंटिस्ट ने चार मेथड, जो रिसर्चर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने अपनी क्लास को शुरू करने के चार डिफरेंट तरीके बताए हैं। आप क्लास कैसे कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट इज बाय गिविंग अ कैप्टिवेटिंग स्टेटमेंट। कैप्टिवेटिंग मतलब कोई सुन के ऐसे ऐसा स्टेटमेंट देकर के आप क्लास शुरू करें। कैसे? कैप्टिवेटिंग स्टेटमेंट में एनालॉगी आप बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अपन आत्मा का चैप्टर पढ़ाते हैं तो क्या बताते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, आत्मा दिखाते हैं और दूसरी तरफ आत्मा में तीन शक्तियां कौन सी, मन बुद्धि संस्कार। आत्मा में मन है, कार में क्या है, ड्राइवर, तो पूरी आत्मा हो गई। आत्मा जैसे ड्राइवर है शरीर में, कार के अंदर ड्राइवर है। आत्मा की तीन शक्ति मन बुद्धि और संस्कार, उस ड्राइवर की भी तीन शक्ति, कार के अंदर तीन शक्तियां हैं, कौन कौन सी, एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर किसकी जगह पर है, मन की जगह है, बुद्धि ब्रेक, और तीसरा, तीसरी क्या चीज है, संस्कार की जगह स्टीयरिंग, हमारे जीवन को दिशा देते हैं संस्कार, हमारे अंदर हमारे जीवन को दिशा देते हैं संस्कार। जैसे आत्मा के अंदर जो संस्कार है उससे इंसान के जीवन की दिशा तय होती है, ठीक ऐसे ही गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग है उससे दिशा तय होती है। तो हम क्या समझाया, एनालॉगी से, सिमिलैरिटी से। कई लोग आपने देखा होगा मोबाइल से भी समझाते हैं आत्मा को, समझाया किसी ने, समझाया ना, सुना होगा आपने मोबाइल से आत्मा को। मोबाइल में क्या करते हैं, मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, करते हैं मोबाइल को रिचार्ज, भाई प्रीपेड है तो क्या करेंगे, 100 रुपए का 200 रुपए का 300 रुपए का डलाते हैं टॉक टाइम, ये रिचार्ज किया, लेकिन फिर भी बिजली से चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। मोबाइल को चार्ज किया बिजली से, लेकिन सिम को चार्ज किया पैसे से, इस शरीर को चार्ज किया भोजन से, लेकिन आत्मा को अध्यात्म से, मेडिटेशन से रिचार्ज किया, उसमें रिचार्ज अलग लगाना पड़ता है। इसमें मान लीजिए आपकी बैटरी बहुत अच्छी है, सिम नहीं है, तो सिम आपके पास है, नई डलवा ली, एक्टिवेट भी करा ली, लेकिन मोबाइल ही नहीं है, अच्छा तो आप ऐसे जैसे कार। तो ये एनालॉगी मेथड से आप चीजों को पढ़ा सकते हैं। दूसरा, स्टार्टल, शॉकिंग न्यूज देकर के। जैसे मान लो आप देश के बारे में बात कर रहे हो, देश में इतने प्रतिशत आज लोग, जैसे 18,000 गांवों में आज देश के अंदर बिजली नहीं है, हमारा कर्तव्य है बिजली लाएं, तो एकदम से शॉकिंग न्यूज दे दी आपने लोगों को, अच्छा इतने सारे गांवों में बिजली नहीं है 60 साल बाद 70 साल बाद भी। तो स्टार्टल से आप शुरू कर सकते हैं, कोई हिस्टोरिकल इवेंट बता करके आप क्लास शुरू कर सकते हैं, इतिहास बता करके। देखिए एक जमाना ऐसा था जब भारत, जैसे शुरू करते हैं ना अपन, गोल्डन एज था, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज लक्ष्मी एंड नारायण, देयर वाज अ वंडरफुल प्लेस ऑन द वर्ल्ड, सोने की दुनिया थी। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट देकर के। कॉम्प्लीमेंट किसको दे सकते हैं, अपने लिसनर्स को या इंस्टीट्यूशन को भी कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। जिस इंस्टीट्यूशन ने आपको बुलाया, देखिए कितना खूबसूरत इंस्टीट्यूशन है, जहां पे वैल्यूज की एटलीस्ट बात हो रही है, आज जिस स्थान पर हम बैठे हैं आपको पता है ये वो ईश्वर की, वो स्वयं की बनाई एक ऐसी धरा, ऐसी धरती है जहां पर वरदानी भूमि है, जो आता है यहां से वरदान लेकर के ही जाता है, जाता है। तो इस भूमि को 100 सलाम, जैसे शांतिवन के लिए हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन है ना, वैल्यूज के नर्चर करने के लिए। तो दुनिया के अंदर भी ऐसे इंस्टीट्यूशन जिन्होंने आपको बुलाया, कॉल किया अपने स्टूडेंट्स के लिए, उस इंस्टीट्यूशन को भी तारीफ कीजिए। जब भी आप तारीफ करते हैं माइंड के ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं, सामने वाला व्यक्ति आपकी बात सुनना पसंद करता है। जैसे ही आप क्रिटिसाइज कर दोगे दरवाजे बंद हो जाते हैं, आपकी बात स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर जाना बंद हो जाती। अच्छा, ये पीछे आ गए क्या हम कुछ स्लाइड्स? अच्छा, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछ करके भी क्लास को शुरू कर सकते हो पहली स्टार्टिंग क्वेश्चंस के। अब वो क्वेश्चन किस लिए पूछ सकते हो आप, या तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन गेन करनी हो या लोगों से पार्टिसिपेशन करवाना है। जैसे ही आप क्वेश्चन पूछते हो लोग हाथ खड़ा करते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक भगवान का पढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका, बीच बीच में प्रश्न पूछते हैं, हाथ खड़ा करवाते हैं, उससे क्या होता है, पार्टिसिपेशन होता है, हजारों लोगों ने हाथ खड़ा किया है तो क्लास का पूरा पार्टिसिपेशन हुआ। देन आप ये भी पता करते हो कि सभी लोग एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो उस बात से। इंसिडेंट, किसी घटना को सुनाते हुए आप क्लास शुरू कर सकते हो, और वो घटना कैसी हो सकती है, या तो आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, या पड़ोसी का एक्सपीरियंस हो सकता है, या कोई ऐतिहासिक पल सुना करके आप क्लास शुरू कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट, ये हमने बात कर चुके हैं इसके बारे में। क्लास शुरू करने के बाद, क्लास खत्म जब लास्ट में आप करोगे तो खत्म करने के कितने तरीके हैं। एंडिंग जब आप क्लास की करोगे तो क्लास की एंडिंग में भी हम चार तरीके से एंडिंग पॉसिबल है। पहला काम, कई ऐसी क्लास होती हैं जहां पे हमें स्टूडेंट को कन्विंस करना होता है। यदि कन्विंस करने वाली क्लास को खत्म कर रहे हो तो कन्विंस कैसे करेंगे आप उसे, कन्विंस करते समय क्लास के मेजर बेनिफिट्स लास्ट में आप रिपीट करोगे। देखो ये फायदा, ये फायदा, ये फायदा, ये फायदा, जो पूरी क्लास आपने एक घंटे की ली है वैल्यूज के बारे में बताया है, लास्ट में मेजर बेनिफिट्स रिपीट करोगे और कोटेशन देकर के क्लास। आज जैसे सुबह आपने देखा होगा आरपी गुप्ता जी का, उन्होंने कितने सारे कोटेशन इस्तेमाल किए क्लास के अंदर, तो आप क्लास के अंत में एक दो कोटेशन या स्टार्टिंग में एक दो कोटेशन यूज कर सकते हैं। कई बार क्लास में ऐसी बोरिंग क्लास होती है कि हम उसमें पूरा इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन थ्योरी 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 पढ़ानी होती है। यदि ऐसा है तो क्या करें, मेजर बेनिफिट्स लास्ट के अंदर समरी बताएं, की पॉइंट्स बताएं और तो उससे क्लास को खत्म करें। कई बार मान लो ऐसी जगह आप पहुंच गए, स्टूडेंट ने कहा नहीं आज तो हम हड़ताल करेंगे, नहीं आज हम हमारा पढ़ने का मन नहीं है, भारत पाकिस्तान का मैच देखना है हमें। तो यदि ऐसा है तो आप उनको पर्सुएड करते हो, पर्सुएड मतलब बहलाने फुसलाने वाली मुद्रा में हो, तो अच्छा चलो आओ देखते हैं, तो पर्सुएड करते हो, तो एक्शन और बेनिफिट दोनों आप उनको बताते हो, साथ साथ ये बोलते हो अच्छा मेरा रिकमेंडेशन ये है, फिर देखते हैं। और लास्ट मेथड है टू इंस्पायर, यदि किसी को इंस्पायर करना हो तो उसको बताइएगा, क्या बताएंगे, क्यों, किस महान कर्तव्य के लिए वो यहां बैठा है। इंस्पायर कैसे करेंगे, या तो महान कर्तव्य से इंस्पायर करेंगे, या उसके एडवांटेज से इंस्पायर करेंगे, या एक चैलेंज देकर के इंस्पायर करेंगे। जो भी ये करेगा ये चॉकलेट, उसे कोई ना कोई चैलेंज क्वेश्चन, देखते हैं देखें ये क्वेश्चन कौन सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग विद ग्रेटर इंपैक्ट, हमारा कम्युनिकेशन इंपैक्टफुल हो उसके लिए ये हम बात कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट ले रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। आई कॉन्टैक्ट मतलब अपने ऑडियंस से बात कर रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट में एक ध्यान रखना। कईयों की कैसे, कई लोग क्लास कराते हैं तो क्या करते हैं, पूरी क्लास बस यूं ही निकल जाती है एक ही स्टूडेंट की तरफ, जैसे पूरी क्लास में बाकी के 2000 लोग नहीं एक ही स्टूडेंट बैठा है। हमारा आई कॉन्टैक्ट हर स्टूडेंट से बना रहे। अवॉइड बींग टाइड अप टू अ स्क्रिप्ट और लेक्टर्न, जो पोडियम है अपना, पूरी क्लास पोडियम के ऊपर खड़े रह करके पढ़ा देना यह भी एक अच्छा तर्क नहीं है। मूवमेंट होना चाहिए, एक अच्छे टीचर की क्लास में मूवमेंट होता है, एनर्जी होती है। क्यों होती है, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, कौन सा पढ़ा था ना एक पॉइंट हमने, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। वो व्यक्ति जो काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है वो भी सेटिस्फाइड हो गया, जो स्पाशियल इंटेलिजेंस है उसको भी बार बार कभी इधर देखना पड़ रहा है कभी उधर देखना पड़ रहा है, वो भी सेटिस्फाइड हो गया। तो क्लास में मूवमेंट होना चाहिए। यूज एक्सप्रेशन एंड जेस्टर्स, एक्सप्रेशन एंड जेस्टर्स आर वेरी गुड थिंग। आप देखिए कुछ राजनेता भाषण करेंगे तो उनके हाथों की स्टाइल कैसी होगी, लेकिन जेस्टर्स जब देते हैं तो जेस्टर्स रेलेवेंट होने चाहिए। रेलेवेंट मतलब समझाना वही चाहिए, हमें अपने देश को ऊपर ले जाना है, ठीक है, एक रेलेवेंट जेस्टर है, हमें अपने देश को ऊपर ले जाना है, देख रहे जेस्टर है, हमारे जेस्टर वही हो जो हम बोल रहे हैं, जेस्टर शुड मैच। दूसरा, बिल्कुल जेस्चरलेस भी नहीं होना चाहिए। आप पूरा यूं करके बस वो सावधान की मुद्रा में पूरी क्लास ले लेते। हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, लर्नर्ड प्रधानमंत्री और विद्वान प्रधानमंत्री में उनका नाम है। जितनी डिग्रियां उनके पास थी, शायद ही बहुत कम लोग होंगे जिनके पास इतनी डिग्रियां उन जैसी होंगी, विद्वता में किसी की कमी नहीं। लेकिन वो इंपैक्टफुल नहीं हो पाए, काम उन्होंने बड़े बड़े किए। ऐसे ही आज के प्रधानमंत्री हैं, काम भी बड़े बड़े कर रहे हैं, आज वो भी किए, उन्होंने भी किए, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बोलने में एक इंपैक्टफुल हो जाता है, दूसरा नहीं हो पाता। द रीजन इज, दो बड़े कारण हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन और दूसरा जेस्चर। वॉइस मॉड्यूलेशन एंड जेस्चर, एक तो जेस्चर और दूसरा वॉइस मॉड्यूल। वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है? हाँ चलिए, आप लोगों को पता है तो इस पे हम आगे बात नहीं करेंगे। ओवरकम बैरियर्स दैट रेस्ट्रिक्ट फ्लेक्सिबिलिटी। अभी हम बात कर रहे हैं देखिए, बट दिस इज नॉट द गुड वे वी आर टीचिंग। एक हाथ में क्या है और दूसरे हाथ में माइक, संभव हो तो माइक कौन सा होना चाहिए? क्योंकि अब देखो, मैं जेस्चर्स तो दे नहीं पा रहे हम अच्छे वाले, हमारे जेस्चर्स रेस्ट्रिक्ट होते हैं, हाथों में कुछ होता है तो। दूसरी चीज, कभी भी अपने हाथ में मोबाइल लेकर के क्या करते हैं हम लोग, एक हाथ में मोबाइल जनरली रहता है तो मोबाइल लेकर के क्लास कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो बाकी स्टूडेंट्स में क्या गॉसिप चल रही होती है? बस देखना सर के पास कौन सा एप्पल का कौन सा वाला मॉडल है, दूसरा बोलेगा अच्छा चाहिए वाला मॉडल है। तो अननेसेसरली हमारा स्टूडेंट्स का ध्यान दूसरी तरफ चला गया। हाथों में कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके पढ़ाते। हाँ, आपकी छोटी सी स्लिप है आपके हाथ में है, वो चलेगा। ये इक्विपमेंट जरूरी है, साइंस के लेने पड़ेंगे, जरूरी है। अदरवाइज आपके पर्सनल मटेरियल को हाथ में नहीं, तो क्या करते रहते हैं, अब हाथ नहीं हो घुमा रहे हैं मटेरियल को, अब वो मटेरियल घूम रहा है जैसे जो भी, मतलब मोबाइल घुमा रहे हैं, तो क्या होगा, स्टूडेंट का ध्यान आपके हाथों की तरफ है। कई बार हम वॉइस मॉड्यूलेशन इतना ज्यादा कर जाते हैं, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखिए बीच में क्या लिखा हुआ है उसके अंदर स्लाइड में, इफ यू एम्फेसाइज एवरीथिंग यू एम्फेसाइज, हम इतनी बात अपनी बात को दबाव डाल डाल के बोलते हैं कि सब, मतलब हर बात पे दबाव डालने पड़ते हैं। बेचारा स्टूडेंट सोचता है इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा था और वेस्ट पार्ट कौन सा है। वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए बट इट शुड नॉट बी टू एक्सेसिव, जरूरत से ज्यादा वॉइस मॉड्यूलेशन भी नहीं होना चाहिए। पॉज, बीच में पॉज, इसको भी वैसे पढ़ाना नहीं चाहिए। 45-50 मिनट के आपको दो घंटे क्लास लेनी हो, डेढ़ घंटे क्लास लेनी हो, तो 45 मिनट की क्लास के बाद थोड़ा सा 5 मिनट का पॉज देना चाहिए, पानी पी के आ जाएं। यहां हम फॉलो नहीं कर पाए लेकिन ऐसा करना चाहिए। नेक्स्ट, पेस, इट शुड नॉट बी टू स्लो एंड नॉट शुड नॉट बी टू फास्ट। बोले आज क्या किया? बोले सब कवर कर डाला आज मैंने, सारे 36 गुण पढ़ा डाले। वो भी नहीं हो कि एक घंटे का क्लास मिला और आप पूरे के पूरे 36 गुणों को पढ़ाएं, और एक घंटे का क्लास हो और पहला गुण भी बोले भी देखो भी उसका डेफिनेशन तो समझाया हूं पहले गुण का, तो नीदर टू फास्ट नॉट टू स्लो। फ्रेजिंग, ये फ्रेजिंग वाली चीज को भी विशेष ध्यान दीजिएगा। कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनके पास, जिनके मुख में एक शब्द ऐसा होता है जिनकी आदत बोलते ही है, उसके लिए कई शब्द यूज करते हैं, तकिया कलाम। कई लोगों का अपना एक फिक्स तकिया कलाम होता है और हर एक सेंटेंस दो सेंटेंस के बाद में वो तकिया कलाम। हमारे एक प्रोफेसर थे स्कूल के टाइम में, बड़े विद्वान प्रोफेसर थे, लेकिन हर चार लाइन के बाद भैंस की टांग, उनका एक तकिया कलाम था। मतलब चार छह लाइन दो लाइन बोलेंगे उसके बाद फिर वही वर्ड आ जाएगा, फिर दो लाइन तीन लाइन बोलेंगे फिर वही वर्ड आ जाएगा, तो आपकी क्लास की जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म होती है। कोई एक पर्टिकुलर वर्ड यदि आप बार 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 बोलते हैं, एक हमारे प्रोफेसर थे वो बोला करते हैं, है ना, आपको समझ में आ गया है ना, तो फिर थोड़ी देर बाद है ना, अब वो तो ये बार 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 सेम शब्द हम रिपीट करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है। मूवमेंट, मूवमेंट और जेस्चर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट इज रेस्पॉन्डिंग टू डिफिकल्ट क्लासरूम सिचुएशंस। कई बार ऐसी डिफिकल्ट क्लासरूम सिचुएशंस आपके सामने होंगी, आपको रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा ये वैल्यूज के बेस पे जानना होगा। क्लास में दो स्टूडेंट थे, आपस में लड़ लिया, आप पहुंचे उसी समय, जबरदस्त फाइटिंग चल रही है। तो इस तरह की डिफिकल्ट क्लासरूम सिचुएशंस हो तो मेंटल कंपोजर शांत दिमाग से तुरंत खुद सॉल्व करने की जगह जो भी उनके रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं आप उनके पास भेजिए, हम खुद उनका सॉल्यूशन नहीं कर रहे। रेलेवेंट अथॉरिटीज के पास भेजिए, कॉलेज के प्रिंसिपल या कॉलेज के जो भी हैं वो उनकी जिम्मेदारी है, वो सॉल्व करेंगे। कम्युनिकेटिंग विद क्लियर कंसाइज एंड पॉजिटिव मैसेज के साथ में बात करें। रिकॉग्नाइज कंसर्न, कम्युनिकेट कॉम्पिटेंस एंड कॉन्फिडेंस, ये प्रोफेशनल टॉक की बात आ गई। रेस्पॉन्डिंग टू डिफिकल्ट क्लासरूम, प्रोजेक्ट अ क्लियर फ्यूचर फोकस। यदि मैंने ये पढ़ लिया तो क्या मेरा भविष्य क्या होगा या मुझको पढ़ने से क्या फायदा, एक क्लियर फ्यूचर उसके सामने होगा कि हां ये पढ़ने से आपको ये फायदा होगा तो स्टूडेंट हमारी क्लास में ध्यान जरूर देंगे। अब उनको लगेगा अच्छा इसके तो नंबर भी नहीं जुड़ते, या पढ़ने से फायदा क्या, पेपर तो होगा नहीं। यदि इस तरह की थॉट्स उनके दिमाग में आ जाती है तो कहीं ना कहीं उनका इंटेंशन या उनका ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट होगा। पे पर्टिकुलर अटेंशन टू ग्रूमिंग। ऐसा नहीं हो कभी कि हम क्लास में पहुंचे ठीक से बाल भी नहीं बा रखे, अपना कॉलर कहीं जा रहा है, मतलब आपकी ग्रूमिंग पे, क्योंकि कौन सा वाला स्टूडेंट हमारे सामने बैठा है, 21वीं शताब्दी का गूगल स्टूडेंट हमारे सामने बैठा है और खुद भी फिट रह के जाता है, वो आपसे भी उम्मीद करता है, आपके अंदर अपना रोल मॉडल तलाश रहा है वो। इसलिए हमारा भी अपीयरेंस एक टीचर का अपीयरेंस हो। प्रेजेंटेशन मेंटेन ए फ्रेंडली पॉजिटिव एंड एंथुसियास्टिक आउटलुक। पॉजिटिव हो रहा पूरी क्लास में सिचुएशन जो हो विन विन अप्रोच हो, कहीं स्टूडेंट विन लूज अप्रोच ना फील करे। दो अप्रोच होती हैं, एक तो विन विन अप्रोच होती है और एक विन लूज अप्रोच होती है। आप विन लूज अप्रोच में मैं जीता आप हारे, और विन विन अप्रोच में आप भी जीते मैं भी जीते। जब भी आप स्टूडेंट को चाहे वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो भी आप उसको विन विन सिचुएशन में ही छोड़ें, भले वो गलत भी बता रहा है तो कम से कम आपने क्या किया, उसको एप्रिशिएट किया कि उसने इतने स्टूडेंट के बीच में खड़ा होकर बोला तो सही। सो स्टूडेंट को हमेशा विन विन सिचुएशन में छोड़ें, विन लूज सिचुएशन में नहीं छोड़ें। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, कई बार हम क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू अपनी क्लास को गवर्न करते हैं, वो क्लास अनलिमिटेड हो जाती है तो उसको लिमिट करने की आवश्यकता होती है, कितने टाइम के क्वेश्चन है और कितने क्वेश्चंस पूछने चाहिए। और कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस लोग पूछना ही शुरू नहीं करते तो हम क्या करें, अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस इनिशिएट कर दें। एक मैजिक फार्मूला है 90% प्लस 5% प्लस 5%। आज दुनिया में जितने भी टीचर पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, 90% पार्ट तो कवर करते हैं, 5 और 5 छोड़ देते हैं। कौन सा 90%, जो उनको सिलेबस पूरा कराना है वो 90% पार्ट तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन इस सिलेबस से फायदा क्या, वो 5% पार्ट या इसको कैसे याद किया जाए, ये दो 5% पार्ट छोड़ देते हैं। यदि हमने क्लास में ये 5% पार्ट ऐड कर दिया तो हमारा क्लास एक मैजिकल क्लास बनेगा। नेक्स्ट, ये स्लाइड मैं स्किप कर सकता हूं क्योंकि इसके बारे में आपको स्वामीनाथन भाई जी ने बहुत कुछ बता दिया है। एक 10-second रूल समझ लीजिए, यदि आपकी स्लाइड को देख करके 10 सेकंड में आपकी स्लाइड समझ में आ जाती है, इसका मतलब आपकी स्लाइड इफेक्टिव है। स्लाइड में मटेरियल कम होना चाहिए, थोड़े पिक्चर्स हों, और पिक्चर्स भी कैसे हों, रेलेवेंट पिक्चर्स हों, कुछ फूल लगा दिए कुछ ये वो, ऐसा नहीं, अननेसेसरीली कोई पिक्चर आपकी स्लाइड में नहीं हो, रेलेवेंट पिक्चर्स हों और साथ साथ 10 सेकंड के अंदर स्लाइड समझ में आनी चाहिए, बुलेट पॉइंट, सिंगल वर्ड, विजुअल्स, ये सारी चीजें अपनी स्लाइड में होनी चाहिए। फॉन्ट 6x6, एक 6x6 रूल और है। 6x6 रूल ये कहता है कि आपकी स्लाइड में 36 से ज्यादा शब्द नहीं होने चाहिए, एक स्लाइड में 36 से ज्यादा शब्द नहीं हो, 6 लाइन से ज्यादा नहीं हो और हर लाइन में 6 से ज्यादा शब्द नहीं हो। देखिए, आप कॉपी में जो लिखते हैं तो हो सकता है एक कॉपी के एक पेज में आप 150 शब्द लिख लेते हो, लेकिन कॉपी वाला साइज वहां पर चल नहीं पाएगा। मैक्सिमम एक स्लाइड पे 36 शब्द से ज्यादा ना हो, 6 लाइन से ज्यादा नहीं हो और एक लाइन में 6 से ज्यादा शब्द नहीं हो। दिस इज कॉल्ड 6x6 रूल। ड्रॉप शेडो और लोअर केस, कई लोग पूरा अपर केस में बना लेते हैं, वो भी जरूरत नहीं है। ये कंप्यूटर फ्रेंडली जो है वो ज्यादा इस तरह की उनको जरूरत पड़ेगी। ये वाला पार्ट स्लाइड में स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट है आई फ्रेंडली फोन्स। ये तो क्योंकि स्लाइड हम आपको डायरेक्ट बनी बनाई दे रहे हैं, इसलिए आपको इसमें बहुत ज्यादा विजुअल अपील, कुछ चीजें जो विजुअल होती हैं समझाने में तुरंत अपील करती हैं। जैसे आप पहले चित्र को देखते ही हम समझा रहे हैं, अच्छा आप एनवायरमेंट के बारे में बताना चाह रहे थे, अच्छा पाई चार्ट हमने बता दिया, किसी डेटा के बारे में जरूरत है तो डेटा के बारे में बता दिया। विजुअल चीजें, जो दिखने वाली चीजें हैं, वो हमेशा अपील करती हैं, उससे क्लास को समझाना, पिक्चर हुआ, बार डायग्राम हुआ। नेक्स्ट है लाइटिंग फैक्टर्स। आपने यह नोटिस किया होगा कि ये जितनी स्लाइड बनी हुई है, ये स्लाइड व्हाइट बैकग्राउंड पे बनी हुई है। वो इसलिए व्हाइट बैकग्राउंड पे बनाई गई है जहां भी लाइट ज्यादा हो, और ज्यादातर जगह आपको ऐसी मिलेगी वहां लाइट ज्यादा ही मिलेगी। जब आप स्कूल कॉलेजेस में, आपको काला रूम तो मिलेगा नहीं, बिल्कुल काला, कमरे उमरे सारे खिड़कियां बंद हो, ऐसा मिलना मुश्किल है। जब भी आपको लाइट बैकग्राउंड के अंदर कोई चीज पढ़ानी हो तो आप भी अपने कंटेंट का मैटर जो है वो ब्लैक में बनाइए और आपका बैकग्राउंड व्हाइट रहना चाहिए। इसीलिए व्हाइट बैकग्राउंड में बनाई गई कि उजाला ज्यादा, नहीं तो क्या करते हैं जनरली, लाइट्स प्रोजेक्टर चलाने से पहले लाइट्स ऑफ करनी पड़ती है ताकि सब लोगों को ठीक से दिखाई दे, व्हाइट बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली दिखाई देता है। कलर्स, आपकी स्लाइड पे मल्टीपल कलर्स बहुत ज्यादा नहीं हुआ, जैसे 6-7 तरह के कलर इस्तेमाल कर लिए उसकी जरूरत नहीं। आप मैक्सिमम एक स्लाइड पे 3 से ज्यादा कलर इस्तेमाल नहीं करेंगे, 1 या 2 कलर, मैक्सिमम 3। जनरल टिप्स, प्रेजेंटेशन पहले से चला के देख लें। क्या होता है, कॉलेज वालों ने एक लैपटॉप दे दिया, अच्छा मेरा तो 2013 पे बना हुआ है, ये तो 2007 है, ऐसा अक्सर होता है। एक पीपीटी जो आपके कंप्यूटर पे चल रही है दूसरे और कंप्यूटर पे हो सकता है नहीं चले। तो आप यदि लेटेस्ट मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उसके लोअर वर्जन्स भी अपने साथ में सेव रखें, ताकि वहां या तो आपका खुद का कंप्यूटर हो, और आपका खुद का कंप्यूटर नहीं है तो सब तरह के कंप्यूटर पे वो चीजें चलनी चाहिए। विजुअल डिलीवरी पे हम बात करेंगे, आई कांटेक्ट। अच्छा, रूम फैक्टर्स पे 2-3 चीजें, 30 से ज्यादा लोग यदि हैं तो माइक का इस्तेमाल जरूरी है, करना चाहिए, रिकमेंडेड है। 30 से कम हो तो भले माइक नहीं हो तो चलेगा। ऑडियंस की लाइन ऑफ साइट पे नहीं आने चाहिए आप। लाइन ऑफ साइट किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए प्रोजेक्टर भी सामने, प्रोजेक्टर कभी बीच में नहीं होता है, सामने प्रोजेक्टर की जगह प्रोजेक्टर कहां होगा, साइड में, नहीं तो क्या हुआ, मैं चलते हुए ऑडियंस की लाइन ऑफ साइट पे आऊंगा। और मान लो मैं आपको कोई चीज ऐसे समझा रहा हूं और सामने से लाइट चल रही है और यहां पर लाइट का प्रभाव पीछे क्या होगा, अलग अलग तरह के पपेट्स बन जाएंगे। देखिए, आप देख रहे हो, व्यक्ति यों करके खड़ा था और पीछे क्या बन गया, हाथ के से क्या क्या पीछे बन सकते हैं। इसका मतलब हमें हाथ में रखने वाली चीजों को अवॉइड करना चाहिए। टर्न प्रोजेक्टर ऑफ और टू ब्लैक। प्रोजेक्टर, मान लो यहां से प्रोजेक्टर चल रहा है और मैं प्रोजेक्टर के सामने ही चल रहा हूं, तो पीछे अलग अलग तरह की शेडोज बनेंगी और लोगों का ध्यान, ऑडियंस का ध्यान उसकी जगह पीछे चला जाएगा। ये हम बात कर चुके हैं, मोबाइल्स वगैरह चीजों को अवॉइड करें। देख रहे हो, बड़ा सुंदर पिक्चर है सेकंड वाला, रीड द ऑडियंस। पूरी क्लास सो रही है और आप तो लगे हुए हो, रात के 10 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं, कोई मतलब ऐसा भी नहीं हूं। हम अपने ऑडियंस को रीड करते रहें कि क्या ऑडियंस इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंटरेक्टिव रखें अपनी क्लास को। कई बार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको उनको देखना पड़ेगा, देखिए ये स्लाइड के इस पॉइंट पर देखिए, तो आपके पास एक लेजर पॉइंटर हो तो अच्छी बात है। कीप योर पोजिशन, ये कहते हैं पावर पोजिशन कहलाती है। पावर पोजिशन या तो आपके पास है या फिर स्टूडेंट के पास है, ऑडियंस के पास है। कई बार आप देखना ये अक्सर होता है, अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स की क्लास में होता है, चारों तरफ शोर मचता रहता है, बहुत जोर जोर से लोग अपनी 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 बातें कर रहे हैं और पढ़ाने वाले में। क्यों? पावर पोजिशन या तो आपके पास रहेगी या ऑडियंस के पास रहेगी। यदि आपकी क्लास में स्टूडेंट का ध्यान नहीं है तो वो पावर पोजिशन आपके हाथ से निकल गई। नेक्स्ट, ये लास्ट में आपका क्लास, टीचिंग क्लास के बारे में हमने जो बात करनी थी वो पूरी लास्ट 5 मिनट का के अंदर हम आपको बता रहे हैं। जब आप कहीं सेवा करने जाएं तो छोटी छोटी 5-7 चीजों का आप ध्यान रखेंगे। यू शुड वियर काले पीले क्लॉथ्स या व्हाइट क्लॉथ्स। हमें हमेशा व्हाइट क्लॉथ या लाइट कलर के क्लॉथ्स हम पहन के जाएं। व्हाइट पहनना संभव नहीं हो तो लाइट कलर्स के। बैज हमारा लगा रहे, फूड गाइडलाइंस हम फॉलो करें। फूड गाइडलाइंस बता सकते हैं क्या है? प्रिंसिपल्स ने हमें कुछ ऑफर कर दिया खाने के लिए, चाय मंगवा ली, कचौरी भी मंगवा ली, तो हम वहां बैठ जाएंगे प्रिंसिपल साहब के साथ खाने में। तो जो फूड गाइडलाइंस है, क्यों? क्योंकि एक आप महान संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। याद रखिए, उस वक्त वहां आप नहीं बैठे हैं, वहां ब्रह्मा कुमारी संस्था और 9 लाख भाई बहनों की सतत मेहनत और तपस्या बैठी है। यदि हमने कोई चीज रूल तोड़ा है तो 9 लाख लोगों का कलंक एक अकेले के सर पे आने वाला है। इसलिए जाते समय क्लास को बिल्कुल रूल पूरा फॉलो कीजिए। फूड से, गर्मी के दिन है, बहुत जरूरी है पानी पीने की, आप पानी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर तो ये हो कि पानी भी अपना अपने साथ लेकर के जाए। फूड रूल्स को फॉलो करें और उसके साथ साथ, अच्छा फूड रूल्स अपनी गाइडलाइंस वो भी फॉलो करनी है घर पे भी। मतलब हम लहसुन प्याज और नॉन वेज और ये चीजें बताने की नहीं, ये तो सब बीके हैं तो सब लोग ये फॉलो करते हैं। घर में भी हम फॉलो कर रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, क्योंकि मान लो हम किसी ठेले पे खड़े होके पानी पूरी खा रहे हैं और बीच में प्रिंसिपल वहां से निकल गया और साहब क्या हाल चाल है, वहीं आप तो हमारे संस्था की इमेज को हम कैरी कर रहे होते। वर्ल्डली टास्क, दुनिया की बातें हमें नहीं करनी है। अब दुनिया की बातों में अक्सर क्या होता है, लेके पॉलिटिक्स टॉक शुरू हो जाती है। अभी कहीं भी किसी स्कूल कॉलेज में चले गए, हमें पॉलिटिक्स टॉक शुरू, नरेंद्र मोदी इज वेरी गुड, पुराने मनमोहन सिंह जी तो कुछ करते नहीं थे, या मनमोहन सिंह जी तो बहुत कुछ करते थे, ये नहीं करते हैं, इस तरह की बातों में हमारा कोई लेना देना दूर दूर तक पॉलिटिक्स टॉक्स पे नहीं हो। या फिर हम क्रिकेट की बात शुरू कर देते, हम दुनियावी बातों पर इंटरेस्ट ना दिखाएं जब कभी सेवा पर जाएं तो। नेम एंड फेम, मान नाम मान शान की इच्छा न रखें, हमारे वाणी में दिव्यता हो, पॉजिटिव बात करें, एक महान संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे हमारे एक्शंस हो, हमारे एक्शंस से हमारे मूल्य झलकते हों, पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रहे और क्लास हम पूरी तैयारी के साथ में जाएं। एक और विशेष विशेष बात भाई बहने जरा अच्छे से समझ लें, हमारे 95% भाई बहन शायद इसको फॉलो करते होंगे, 1% नहीं या 2% नहीं फॉलो करते हैं, तो विशेष विशेष मैं जोर देकर के एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं, बिजनेस टॉक्स शुड नॉट मस्ट नॉट इन्वॉल्व इन अवर एनी टाइप ऑफ सेवा कार्य। सेवा के कार्य में गए, पता लगा वहां पर हम नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करके आ गए, 2 मेंबर बनाए गए, इस तरह का बहुत जगह बहुत देखा है हमने इस तरह की चीज ना। तो ये चीज सेंटर के किसी सेंटर के प्रमाइसिस में भी ये चीज नहीं होनी चाहिए कि हम कोई चीज सेल आउट कर रहे हैं या हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, ये सेंटर प्रमाइसिस में अलाउ नहीं है। कहीं बाहर सेवा के लिए जा रहे हैं, वहां पे अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, उनसे कुछ पर्सनल इस तरह की चीजों से, क्योंकि फिर वो सेवा सेवा नहीं रहती। हम लर्न मेंटेन एंड टीच गुड हैबिट्स, खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। डू नॉट मेक पर्सनल कॉन्टेक्ट विद द पार्टिसिपेंट्स, संस्था से जोड़ना है हमें पार्टिसिपेंट्स को, सेंटर से जोड़ना है, अपने आप से नहीं जोड़ना है। जनरली हम अपना मोबाइल नंबर, अच्छा कोई जरूरत हो तो मेरे से बात कर लेना, ऐसा नहीं। कोई जरूरत हो तो ये हमारा सेंटर का एड्रेस है, ये सेंटर है, यहां पर आइए, बहन जी से मिलवाइए। उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, जाके आप बोलिए कि आप बहन जी सेंटर से बात करें, वहां पे आपको पर्सनल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। रेफर बीके टीचर्स, फॉलो डिसिप्लिन ऑफ अलौकिक ब्राह्मण लाइफ। अच्छे सेवाधारी वो हैं जो सुबह उठ के अमृत वेला भी करते हो, मुरली भी पढ़ते हो, एक्सरसाइज भी पढ़ते हो, पांच टाइम का जो स्वदर्शन चक्र है वो भी फिराते हो, बीच में ट्रैफिक कंट्रोल आता है तो ट्रैफिक कंट्रोल भी करते हो, नुमा शाम का योग भी करते हो, जिनका गुस्सा अपने कंट्रोल में हो, स्वभाव शीतल हो, पवित्रता जिनके चेहरे से झलकती हो, ये बेसिक बेसिक छोटे छोटे सिद्धांत हमारे जीवन में है तो हमारी सेवा में सफलता लिखी पड़ी है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।